ओम शांति, ओम शांति। युवाओं के लिए एक बहुत सुंदर सी बात कही जाती है कि जो तोड़ने से भी ना टूटे उसे मजबूत कहते हैं, जो तोड़ने से भी ना टूटे उसे मजबूत कहते हैं। जो ले जाता है जिंदगी को उठाकर उसे यमदूत कहते हैं, और जो बना सकता है इस संसार को स्वर्ग उसे यूथ कहते हैं। और वही युवा आज मेरे सामने बैठा हुआ है जिस पर आंधी और तूफान का कोई असर ही नहीं है, राइट? भले बाहर प्रकृति अपने विकराल रूप में है, लेकिन फिर भी हम सब यहां सुंदर चिंतन के लिए एक नए विश्व, एक बेहतर विश्व के निर्माण के उद्देश्य को लेकर, और इसमें मेरी क्या भूमिका हो सकती है, मैं कैसे अपना रोल अदा कर सकता हूं, उस पर गहन विचार विमर्श करने के लिए बैठे हुए। कई ऐसे होंगे जो प्रकृति का बाहर आनंद ले रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे युवा, लेकिन हम सब पूरी जिम्मेवारी के साथ प्रकृति का आनंद लेते हुए भी अपने इस सुंदर विश्व को बेहतर बनाने के उद्देश्य से यहां बैठे हुए हैं। और आज भी एक सुंदर सा डायलॉग इस मंच पर हमारे बहुत ही जो विद्वान वक्तागण हैं अपने अपने क्षेत्र के, वो अपने सुंदर विचार रखेंगे कि कैसे हम इस बेहतर विश्व में अपनी भूमिका, अपना योगदान दे सकते हैं। इसके लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं ब्रह्मा कुमारी सुमन बहन जी को, बहन स्नेहा जेवाले जी को, और साथ ही भ्राता रामकृष्ण जी को। आप सभी मंच पर आमंत्रित हैं, और हम करतल ध्वनि से आज के जो हमारे ये प्रबुद्ध वक्ता हैं इनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, जो आज के सुंदर विषय पर हमें प्रकाश देने वाले हैं। और हमें और भी ज्यादा गहराई में ले चलने वाले हैं। अनुरोध करता हूं अपना स्थान ग्रहण करें, और आप जानते ही हैं हमारी सुंदर भारतीय परंपरा, हमारी संस्कृति जो हमारी नींव में है, जड़ में है, कि हर कार्य की शुरुआत प्रभु पिता की स्मृति से हम करते हैं। तो चलें उस प्राणेश्वर परमात्मा पिता का इस सुंदर सभागार में आह्वान करते हैं, और उनकी उपस्थिति में ही आज के सुंदर सत्र को हम सभी करेंगे 3 मिनट बहुत गहरी परमात्मा स्मृति में।
सदाशिव निराकार, ओ आनंद के सागर, तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार,
महिमा परंपरा।
हिंदी में एक मुहावरा आता है और मुहावरा ये है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता। और वो ये सोचता है कि समाज में यदि बहुत ज्यादा विकृतियां हैं, बुराइयां हैं, तो मुझ अकेले व्यक्ति के परिवर्तन या मेरे द्वारा किया गया प्रयास कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं ला सकता। और यही एक सोच है जो व्यक्ति को परिवर्तन से, एक सकारात्मक परिवर्तन से रोक देती है। लेकिन युवा शक्ति हमेशा से ही इतिहास में अपनी ऐसी भूमिका अदा करता रहा है कि उसने लोगों के विचार को परिवर्तित किया है, जीवन को परिवर्तित किया है और संसार को एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करके दिखाया है परिवर्तन का। और हम सभी वही युवा हैं, एक एक के अंदर वही जोश, वही उमंग, वही उत्साह। जब एक विवेकानंद जी इतने लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, एक शिवाजी महाराज इतने सारे लोगों में एक जन आंदोलन ला सकते हैं, अनेक युवाओं के जीवन को जब हम देखते हैं जो परिवर्तन लाने के एक सुंदर उदाहरण बने हैं, क्यों नहीं हम भी। और प्रयास यदि एक सार्थक दिशा में हो तो वहां तो यदि हमारी आहुति भी हो, बलिदान भी हो, तो उसे भी लोग नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और उसी सार्थक दिशा की ओर आज की ये चर्चा है, एक बेहतर विश्व के निर्माण की ओर। आज के जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनसे मैं आपको परिचित करा देता हूं जो आज के इस सुंदर विषय पर अपनी बात रखने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं स्नेहा जेवाले जी, हम करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन करते हैं। डावरी विक्टिम रही हैं आप और एसिड अटैक जिसके बारे में हम सुनते रहते हैं उसे भी आपने झेला है, लेकिन ऐसी जो एक क्या कहें तोड़ने वाली घटना होती है किसी भी व्यक्ति को, आपने खुद को टूटने नहीं दिया लेकिन एक उदाहरण प्रस्तुत किया अनेक लोगों के बीच, समाज के बीच। और साथ साथ हमारी बहनें हमारी पैनलिस्ट का सम्मान बैच के माध्यम से कर रही हैं, मैं उन्हें उनका परिचय भी साथ साथ कराता चल रहा हूं। आप मराठी टीवी डेली सोप में डायलॉग राइटर हैं, 2012 में निर्भया थिएटर जिसका निर्माण किया गया उसमें भी आप अपना बहुत सुंदर सहभागिता रखती हैं, बहुत सारे अवार्ड्स आपको प्राप्त हुए हैं बैच के द्वारा। सुमन बहन जी का भी सुंदर अभिनंदन, स्वागत, और भ्राता रामकृष्ण भाई जी का भी। ...2022 में स्नेहा जी को करमवीर चक्र से भी नवाजा गया और बीबीसी के 100 ग्लोबल जो विमेन इन्फ्लुएंसर हैं उनमें आपका भी नाम है, जिनमें प्रियंका चोपड़ा जी भी शामिल हैं। इस पे जोरदार तालियां तो बनती हैं इनके लिए जिन्होंने बहुत ही सुंदर ...2023 में आपको महाराष्ट्र सरकार से महाराष्ट्र ची कन्या अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 2023 में भी आपको सम्मानित किया गया, युवा शक्ति फाउंडेशन आप चलाते हैं, मराठी बीबीसी के कार्यक्रम को भी आप प्रेजेंट करती हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ब्यूटी कॉन्सेप्ट चेंज मेकर हैं। इतनी सारी सुंदर प्रतिभाओं की धनी स्नेहा जेवाले जी आज हमारे बीच हैं, सचमुच हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और ये मंच, ये सभागार और सभी युवा आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथ ही आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सुमन बहन जी हमारे बीच हैं। आदरणीय सुमन बहन जी को बाल्यकाल से ही विश्वविद्यालय का सुंदर परिचय प्राप्त हुआ और अपने माता पिता के साथ आप विद्यालय की सुंदर इस ज्ञान और योग में रम गईं। आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में अपनी इंजीनियरिंग पूरी की और उसके पश्चात आपने अपना पूरा जीवन ही समर्पित कर दिया। देश विदेश में आप युवाओं को ही नहीं लेकिन सभी को प्रेरित करती हैं अपने आध्यात्मिक ज्ञान से। जैसे युवा प्रभाग है हमारा, वैसे ही एजुकेशन विंग है जिसमें एजुकेशन से जुड़े हुए सभी शिक्षाविदों का, विद्यार्थियों का, अन्य लोगों का की सेवाएं की जाती हैं, उसकी आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। ज्ञान सरोवर में भी जो सेवाएं होती हैं उसे भी आप बेहतरीन तरीके से कोऑर्डिनेट करती हैं। तो एक बार करतल ध्वनि से हम सुमन बहन जी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और साथ ही आप परिचित हैं, कल भी रामकृष्ण भाई जी आपसे मिल चुके हैं। रामकृष्ण जी साइकोलॉजिस्ट हैं, मैनेजमेंट कोच हैं और बहुत ही अच्छी तरह से मॉडर्न साइकोलॉजी और एंशियंट मेडिटेशन, इन दोनों को मिलाकर आपने गहन अध्ययन किया है और अनेकानेक लोगों को प्रेरित करते हैं। तो आज का बहुत ही बेहतरीन विषय, माई रोल इन क्रिएटिंग अ बेटर वर्ल्ड। हम सब एक बेहतर समाज, एक बेहतर विश्व चाहते हैं। कौन कौन चाहता है, कौन कौन चाहता है? हम सभी चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, वहां जाना कौन कौन चाहता है एक बेहतर विश्व में, वो भी जरा हाथ उठा लें। बहुत सुंदर। मतलब हम एक बेहतर विश्व की परिकल्पना लेके लंबे समय से चल रहे हैं। बापू गांधी जी ने भी स्वप्न देखा था राम राज्य हो, और उनके राम राज्य कहने का भाव एक बेहतर विश्व ही था। परमात्मा पिता भी हमसे यही कहते हैं कि तुम्हारे लिए भी मैंने एक बेहतर विश्व बनाया था जो अब नहीं है, हम सबको मिलकर बनाना है। तो मैं शुरुआत कर रहा हूं आदरणीय सुमन बहन जी आपसे। जब हम एक बेहतर विश्व की बात करते हैं व्यक्तिगत जीवन में, जैसे माई रोल की बात हो रही है कि मेरी भूमिका क्या हो, बाल्यकाल से आप इस विश्वविद्यालय से जुड़ गए, आपको क्या ऐसा लगा इस विश्वविद्यालय में, और एक बेहतर विश्व का कॉन्सेप्ट जब आपके सामने आया, क्या आपके मन में आया कि ये संभव है, ये किया जा सकता है, और यदि ये किया जा सकता है तो मैं उसके लिए क्या करूं? आपकी क्या उस समय की एक मनोस्थिति थी, मनोभाव थे? आपके अनुभव से शुरुआत करना चाहेंगे।
ओम शांति। वैसे बाल्यकाल से ही इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ जुड़े थे, जब मैं 5 साल की थी तब से, लेकिन उस समय तो इतने ज़्यादा समझ नहीं होता है ज्ञान के बारे में, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते रहे और ज़्यादा फिर इस संस्था के साथ जुड़ करके ज्ञान सुनते रहे, फिर बाद में ये उसमें विश्वास बैठा कि हाँ ज़रूर ये बेहतर विश्व, बेटर वर्ल्ड ज़रूर आना है। वैसे तो हम सभी जानते ही हैं, सब टाइम साइक्लिक है, रात के बाद दिन को आना है, दिन के बाद रात है, ये दिन और रात का साइकिल है। फिर सीजनल साइकिल्स है और लाइफ साइकिल है, तो सभी साइक्लिक रूप से आगे बढ़ता है। तो ऐसे ही ये पूरा विश्व एक साइकिल है जो कलयुग के बाद सत्युग को आना ही है, चाहे हम चाहे या ना चाहे। रात को हम सो रहे हैं और ये सोचे कि रात लंबी हो, सुबह ना आए, तो ये नहीं हो सकता। समय पर तो सुबह तो आना ही है। तो लेकिन मैं उसके लिए तैयार हूं, ये महत्वपूर्ण है। समय अनुसार तो बेहतर विश्व या सत्युग या फिर परफेक्ट टाइम वो तो आना ही है, लेकिन क्या मैं उसके लिए तैयार हूं? तो वो विचार मुझे बहुत लगा कि मुझे अपने आप को तैयार करना होगा उस बेहतर विश्व में जाने के लिए। और कौन जा सकते हैं उस बेहतर विश्व में? सभी तो जा नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए बहुत साफ जगह है लेकिन मेरा संस्कार है गंदगी करने की, यहाँ वहाँ गंदगी छोड़ने की संस्कार है, तो मैं उस भले इतना सुंदर जगह बहुत सुंदर है, मैं वहाँ जाऊँगी तो 2 मिनट में उसको गंदा कर लूँगी, क्योंकि मेरा संस्कार मैंने परिवर्तन नहीं किया है। ऐसे वहाँ बेहतर विश्व में जाने के लिए क्या मेरा संस्कार ऐसे लायक है? तो वो जब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, मुझे वहां जाने के लिए लायक बनना होगा, उसके वीजा लेने के लिए भी तो लायक बनना पड़ेगा ना, तो फिर उस तरफ मेरी कोशिश रही और उस तरफ मेरा पुरुषार्थ रहा, फिर वहां से शुरू हो गया।
बहुत सुंदर, एक सुंदर शुरुआत आपने की जो आज कितने सारे लोगों को प्रेरित कर रहा है। स्नेहा जी, जब हम अपने जीवन के बातें, सिचुएशंस, उन सब में उलझे हुए होते हैं या उनका सामना कर रहे होते हैं, इतनी सारी समस्याएं हमारे व्यक्तिगत जीवन में होती हैं, ऐसे में हम अपने बारे में ही सोच रहे होते हैं कि मैं इससे बाहर कैसे आऊं, और ये व्यक्तिगत रूप से हर एक के साथ होता ही होगा। ऐसे में एक सुनहरा विश्व हो, बेहतर विश्व हो, बेहतर समाज हो, ऐसा विचार आना क्या संभव हो पाता है? ऐसे में कैसे अपने आप को बाहर निकालें?
जी, जरूर संभव हो पाता है। आपके प्रश्न का जवाब देते हुए मैं अपनी स्टोरी 2 मिनट में शेयर करना चाहूंगी सभी के साथ। ओम शांति, नमस्कार। यहाँ बैठे हुए उपस्थित जनों को विनम्र अभिवादन करती हूँ। मेरा चेहरा आपको बहुत कुछ कहता है। मेरे चेहरे पे मेरी इतिहास हिस्ट्री लिखी है, जिसे मैं बदल नहीं पाती हूँ। बट मुझे कल अगर नई हिस्ट्री चाहिए तो उसको बदलने की कोशिश जो की है, जिसकी शुरुआत चेंज मेकिंग से रही है। मुझे मेरे ससुराल वालों ने जलाया था दहेज प्रथा के लिए। वहाँ से मेरा दूसरा जन्म या जर्नी शुरुआत हुई। बहुत शॉर्ट में बताना चाहूँगी आप सबको, जब ये घटना घटी 2000 में, क्रिसमस के एक दिन पहले की बात थी, 24 दिसंबर 2000। और वहाँ से बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस हुए। जहाँ पे मम्मी पापा की बहुत लाडली बेटी थी, वहाँ से उन्होंने भी हाथ उठाए सर से कि बेटी ससुराल में गई है डोली में, तो वहाँ से अर्थी पे वापस जाएगी। ये सो कॉल कॉन्सेप्ट था, उसको अभी भी बहुत जगह पे चल रहा है। पर वहाँ पे भी मैं कहती हूँ, आपके बेटी की गलती नहीं है तो प्लीज उसको सपोर्ट करो, उसको ऐसे ही मत छोड़ो। इन लॉज ने 4 साल का बेटा भी ले लिया और मुझे अकेला छोड़ दिया था। तो तब जाने के टाइम मुंह पे ऐसे 500-500 के 2 नोट फेंक के दरवाजा बंद करके बेटे को लेके उनके मम्मी जी, हस्बैंड और बेटा लेके निकल गए। वो 1000 रुपीज और अकाउंट पे 1500 रुपीज रखे थे, जबकि मैं जॉब कर रही थी, पर मेरा ATM उनके पास था। घर के खर्चे है बोल के ले लिया और मैंने भी दे दिया था। वहां से शुरुआत थी कि अब जीऊंगी तो कैसे जीऊंगी। मम्मी पापा का सपोर्ट नहीं है। जो अड़ोसी पड़ोसी थे, जो कुछ न कुछ सीखने के लिए घर पे आते थे, बात करने आते थे, उन लोगों ने बात तक करना बंद किया। उल्टा ये बोलना शुरू किया कि इसको देखा तो मुझे अटैक जैसे कंडीशंस हुए। मैं 4 दिन फीवर से पड़ी रही और वो मेरे लिए बहुत तकलीफ वाली बात थी, क्योंकि मैं बाहर निकलती थी तो पूरा फेस कवर करके, सनग्लासेस डाल के, बस इतने हाथ ओपन रख के जाती थी। जब आपने देखा ही नहीं है मुझे, तो आपको अटैक जैसा कंडीशन कैसे होगा? और ये दोहरी मानसिकता क्यों है? जब आप थिएटर में 300-400-800 का टिकट लेके वो इफेक्ट देखने जाते हो, वो मेकअप देखने जाते हो, वहाँ 800 का पॉपकॉर्न खाते हुए वो फिल्म को एंजॉय करते हो, इफेक्ट्स को एंजॉय करते हो, तो एक जीता जागता इंसान इस समाज में है जो जीने की कोशिश कर रहा है, उसकी गलती के बिना वो किस तरह से लड़ रहा है वो देख के आप मदद नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट उसको डिमोरलेट मत कीजिए, उसका खच्चीकरण मत कीजिए। वहां से था कि अब मुझे जीना है। इतने सपने प्रॉब्लम्स के बाद अगर मैं जिंदा हूं तो क्यों हूं? 42% डीप बर्न था, पर उसमें आंखों की रोशनी अभी भी कायम रखी भगवान ने। कान के सुनाई देना, कान पूरे जल गए ग्राफ्टिंग के बाद। आफ्टर 22 सर्जरीज मैं आज आपके सामने हूं, और वहां पे मैंने अपनी सर्जरी स्टॉप किए थे। अब बस मैं ये पेन नहीं सह पा रही हूं। तो कान भी ठीक से चल रहे हैं, मुंह का फंक्शन भी ठीक से चल रहा है भगवान की दया से। हाथ पैर, जो बॉडी का फंक्शन भगवान ने दिया था वो एज इट इज ओके था। हाँ, खूबसूरती जिसे बाहरी सुंदरता कहते हैं वो जरूर बाकी के नजरों से कम हुई थी। तो वहां पे मैंने अपने आप को ये बात बोली थी। कल से भी जो मैं मोटिवेशनल सबको सुन रही हूँ, सबने यही कहा है, मैं किसी से प्रभावित नहीं हूँ, अपना प्रभाव खुद रखा। अभी दीदी ने भी थोड़ी देर पहले बोला, कल भी आपके सेशंस में हमने सुना था। और ऐसा है, जब आप अपने आप को किसी चीज के लिए क्लियर कर देते हो और आपका थॉट क्लियर होता है, विजन क्लियर होता है, यस आई एम ब्यूटीफुल, मैं अपने आप को मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स से कम नहीं समझती।
आपकी ब्यूटी आपके अंदर है, आप सभी में एक मोटिवेशनल इंसान छुपा होता है। तो मैं कहती हूँ, आपका चेहरा आपकी आइडेंटिटी क्यों बने? मेरा चेहरा मेरी पहचान नहीं है, मेरे कर्म मेरा काम मेरी पहचान है, और वहीं से मैंने शुरुआत की है जो आज तक चल रही है। लाइफ में बहुत डाउनफॉल आए, डॉक्टर के पास जाने को 600 रुपीस तक नहीं दिए थे पेरेंट्स ने, वो जर्नी भी है, और आज अपनी खुशियां खरीद सकती हूँ। मैं खुशी कह रही हूँ, मैं पैसे से लेके बहुत बड़ी चीजें नहीं कह रही हूँ, जो चीज मुझे खुशी देती है वो मेरे लिए महंगी है। तो जब मैं बहुत ज्यादा डाउन थी और उसमें से निकलना था, तब मैंने अपने आप पे काम किया था, मैं किस चीज में बेटर हूँ, मैं क्या सर्व कर सकती हूँ कि ये टीवी पे आने वाले सेलिब्रिटीज मुझ तक पहुंचेंगे और एक महीना 15 डेज बिफोर मेरी अपॉइंटमेंट लेंगे। तो उस हिसाब से काम शुरू किया था, जैसे सर आपने बताया, टैरो कार्ड, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, हिप्नोटिज्म, वास्तु, फेंग शुई, टी कॉफी रीडिंग, चाय या कॉफी से भविष्य बताते, ये सब सीखा और वहां से क्लाइंट्स लिए थे, और आज का जर्नी यहाँ पे है। हाँ, चेंज मेकिंग आपने पूछा कि आप क्या कर रहे हो, तो चेंज मेकिंग के लिए जो ब्यूटी कॉन्सेप्ट है, जो जॉब के लिए, शादी के लिए बोला जाता है, टॉल चाहिए, गोरी चाहिए, सुंदर चाहिए, पतली चाहिए, वो कॉन्सेप्ट आप थोड़ा सा चेंज करके आ जाओ। उसके अंदर जो उसकी खूबियां है, टैलेंट है, उसको भी प्रमोट कीजिए, जो मेरे लिए बीबीसी ने हाल में किया, और वो एंकर का कॉन्सेप्ट तोड़ के उन्होंने मुझे वहां काम दिया, जिसके आज आप व्यूज नीचे देखोगे, कमेंट्स देखोगे तो बहुत सुंदर आए हुए हैं। डिप्रेशन फील जरूर होता है, आज भी होता है एक आध बार, ऐसे नहीं कि नहीं होता है, बट उसे निकलने के लिए आप अपने आप पे काम करो। कोई भी चीज ऐसी नहीं है, दो ही चीजें होती है, या तो हारोगे या तो जीतोगे, इसके बीच में कुछ नहीं होता है। हार एक्सेप्ट जो करता है वो हार यश की पहली सीढ़ी होती है, उसके बाद आपको क्या है, तो आपके पास जीत है, और मुझे जीतने का नशा है, मैं हारना पसंद नहीं करती। तो यस, इसीलिए आज आपके सामने बैठी हूँ और यहाँ से बहुत कुछ सीख रही हूँ।
थैंक यू वेरी मच। सचमुच जीत का आपका जज्बा हम सबके अंदर जज्बा भर रहा है, राइट? जरा एक हाथ हिला करके बताएं। सचमुच ये बहुत ही ज्यादा प्रेरक है, उत्साहित करने वाला है, जो एक नई दृष्टि आप हम सबके सामुख रख रहे हैं। और मुझे लगता है जो आपने कहा कि चेहरा नहीं लेकिन चरित्र, चेहरा नहीं लेकिन हमारा कर्म, ये हमारी पहचान होनी चाहिए, और मुझे लगता है यही बेहतर विश्व की एक सुंदर नींव है। बहुत सुंदर सी बात आपने
बस
कही।
यहीं पे एक बात कहना चाहूंगी, लता मंगेशकर जी का गाना है, मेरी आवाज ही मेरी पहचान है, मेरा कर्म ही मेरा पहचान है। फिर
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रामकृष्ण जी, एक बात जैसे मैंने स्नेहा जी से भी कही, जब व्यक्ति के जीवन में इन्होंने एक जज्बा रखा, जोश रखा, उत्साह रखा, जो वहां से बाहर आए और सबके लिए प्रेरक बन गए, व्यक्ति कई बार इन चीजों से बाहर नहीं आ पाता। आप साइकोलॉजिस्ट हैं, बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे युवाओं से मिले हुए होंगे, जब वो अपने आप से बाहर नहीं आ पाते हैं अपने किसी थॉट से, तो उन्हें डिप्रेस करने लगता है, हराने लगता है, परेशान करने लगता है, और ऐसे में फिर वो बेहतर विश्व के बारे में, अपने बेहतर कल के बारे में नहीं सोच पाते। यदि वो ऐसी कंडीशन में है, यहां से वो कैसे बाहर आए, तब फिर हम आगे की बात कर सकें, आप क्या सजेस्ट करेंगे?
ओम शांति। मिस यूनिवर्स चेंज मेकर स्नेहा बहन बात करने के बाद मैं क्या बात करूं? इस आपने जो प्रश्न पूछा उसका तो जीता जागता एग्जाम्पल वही रहे। जब भी कोई एक बहुत ही क्रिटिकल चैलेंजिंग सिचुएशन लाइफ में आ जाता है, और जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और सारे आधार जो भी हम अपने लिए बनाते हैं वो सारे टूट जाते हैं, कोई आधार नहीं दिखता, कोई रास्ता नहीं दिखता, और बहुत कंफ्यूजिंग रहेगा और हेल्पलेस महसूस करेंगे, उस समय कहीं ना कहीं ये भी महसूस होता है कि खुद भी खुद का साथ नहीं दे पा रहा है। वरना लाइफ ने आपको एक क्रॉस रोड पर खड़ा कर दिया, ठीक है, एक ऐसे सिचुएशन पर खड़ा कर दिया। क्रॉस रोड्स तो है मगर कोई रास्ता कॉन्क्रीटली ले नहीं पा रहे हो। अगर आप मुझसे पूछते हैं तो आप जीवन के बेस्ट मोमेंट पे हो, आप जीवन के स्पॉटलाइट पे हो, दैट इज द बेस्ट मोमेंट ऑफ लाइफ। क्योंकि ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां आप अपनी डेस्टिनी को डिजाइन करना शुरू करोगे, एक ऐसे पॉइंट पर हो जहां पर आपको खुद की एक विजन बन रही है, आपका सारा इन्फ्लुएंसेस कट हो गए हैं। आप अगर हो तो खुद की बल मजबूती पे हो। उस समय जैसे स्नेहा बहन ने कहा, मैंने कई स्टोरीज सुना, किसी के पास 10 रुपए ही थे, किसी के पास 1,000 रुपए है, जीवन शुरुआत वहां से किए हैं। आप कई बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर्स जो खड़े किए हैं उनकी अगर लाइफ देखे तो ऐसे ही सिचुएशन पर कहीं ना कहीं खड़े, वहां से पूरा एम्पायर क्रिएट किया। माना अगर कहीं ना कहीं इस प्रकार की सिचुएशन किसी के पास है वो लकीएस्ट है। उस समय हमें 2-3 चीजों की प्रयास करना शुरू करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल खुद को बहुत प्यार से, बहुत रिस्पेक्ट से एक्सेप्ट करना ये सिचुएशन को। हो सकता है आपकी गलती से ही वो सिचुएशन पे आप पहुंचे हो, फिर भी आप खुद को पूरी तरह से एक्सेप्ट करना फर्स्ट स्टेप है। और दूसरा स्टेप है जीवन की शुरुआत से आज दिन तक एक बार सारा रील को रिवाइज करना है, और जो भी अच्छे कर्म आपसे हुए हैं और जहां जहां आपको सक्सेस मिला है उन सब सक्सेस और उन सब गुड डीड्स को, गुड कर्मा को पूरा लिखना चाहिए बैठ के, ताकि हम समझ सके हमारा ताकत कहां पर है, हमारा स्ट्रेंथ कहां पर है, हमारे स्पेशलिटीज कहां पर है, हमारे यूनिक क्वालिटीज कहां पर है, उसकी अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। और वो सारे समझने के बाद फिर अपने आप को मन से उस अनंत स्रोत के साथ, परमात्मा के साथ दिल से समर्पण भाव से पूरी तरह से कनेक्ट होने की प्रयास करें। फिर नेक्स्ट स्टेप, ओके, एक अल्टीमेट ऑप्टिमिज्म के साथ, एक अनलिमिटेड ऑप्टिमिज्म के साथ अब लाइफ पूरा जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। कई बार नेगेटिव से कई लोग स्टार्ट करते हैं, वहां से आगे के लाइफ के लिए एक टोटल ऑप्टिमिज्म के साथ एक विजन बनाए और उस विजन के साथ जुड़ जाए। बस आपका जितने भी वीक थॉट्स है वो सारे बह जाएंगे और एक ऑप्टिमिज्म के साथ आप आगे बढ़ेंगे। ट्राई करके देखिए।
बहुत सुंदर। आशा और विश्वास का दामन यदि थाम कर हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं है, और वैसे भी युवाओं के लिए कुछ भी असंभव नहीं है ये कहा जाता है। और किसी ने यही कहा कि चलो शुरुआत यदि मेरे हाथ में नहीं रहा, मध्य मेरे हाथ में नहीं रहा, लेकिन अंत तो मेरे हाथ में है। उसे क्रिएट करने के लिए यदि हम वर्तमान से लग जाते हैं तो हम एक बेहतर एंडिंग अपने लाइफ के लिए, समाज के लिए जरूर क्रिएट कर सकते हैं। तो उसकी शुरुआत हम आज से, अभी से करें, ये सुंदर संकल्प हम जरूर लेकर के जाएंगे इस डायलॉग से। सुमन बहन जी, एक विशेष बात आती है कि मेरी उम्र अभी 18 साल की है, 20 साल की है, 22 साल की है, मैं तो अभी बिल्कुल यंग हूं, अपने जीवन की शुरुआत कर रहा हूं, तो यहां एक बेहतर विश्व का निर्माण जी
आपको देख के एक्चुअली ऐसे ही लग रहा है 18 साल का हूं और शुरुआत कर रहा हूं लाइफ का, आपको देख के ऐसे ही लग रहा है।
बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ सभी मेरे युवा साथी ही बैठे हुए हैं, इसीलिए उनके मन के भाव मुझ तक पहुंच रहे हैं ऐसा लगता है। तो यदि मैं 18, 20, 22 अपनी करियर, अपने भविष्य के निर्माण के बारे में सोच रहा हूं, यहां मैं एक बेहतर विश्व के लिए क्या कर सकता हूं, मेरी क्या भूमिका हो सकती है, जबकि मैं अपने करियर के बारे में सोच रहा हूं। और दूसरा इसका वो भी पहलू है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विश्व के बारे में सोचने वाले हैं, मेरे सोचने से क्या कुछ होगा।
ओम शांति। जरूर होगा, क्योंकि वो कहानी सुनी होगी ना, हर एक ने सोचा कि दूध कौन डाले, तो अब पानी डालते रहे तो फिर वो तालाब में दूध के बजाय पानी भर गया। तो ऐसे हर एक ऐसा सोचे कि मेरे सोचने से क्या होगा। तो इसलिए कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर बनता है। तो एक व्यक्ति अगर रेवोल्यूशनरी सोच के साथ जब शुरू करता है तो कारवा तो साथ में आ ही जाता है मदद करने के लिए। तो इसीलिए कभी यह न सोचे कि मेरे सोचने से, अकेले के सोचने से क्या होगा, बहुत कुछ हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि हमारे संकल्प में बहुत शक्ति है, अपरम अपार शक्ति है। जिस तरफ मोड़ना चाहे अपने जिंदगी को, उस तरफ आप मोड़ सकते हैं। और ना केवल खुद की जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, लेकिन अनेक अनेक लोगों की जिंदगी को भी हम बेहतर बना सकते हैं। और दूसरी बात, कैसे बनाएं, कैसे हम बेहतर विश्व के लिए सहयोगी बने। हम शुरुआत करें अपने सोच से। भले हम ज्यादातर ज्यादा हम कर नहीं पाए, लेकिन एटलीस्ट सोच को तो हम पॉजिटिव रख सकते हैं, ऑप्टिमिज्म को बहुत बढ़ा के रखें, सकारात्मकता को हम हमेशा अपना साथी बनाएं। और केवल अपने थॉट्स और फीलिंग्स को हम अगर पॉजिटिव और पावरफुल बना के रखते हैं तो बहुत कुछ हम परिवर्तन जरूर कर सकते। वैसे तो कहेंगे हर रीति से हम सहयोगी बने, तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा, तो हर तरीके से हम मददगार जरूर बने। लेकिन ज्यादातर नहीं बन सकते हैं तो फिर एटलीस्ट मन से हम एक दूसरे के प्रति अच्छे गुड फीलिंग्स जरूर रखें। और क्यों रखें, ये भी तो होता है कि हम दूसरों की मदद क्यों करें, समाज की मदद क्यों करें। तो हम जब तक दूसरों की मदद नहीं करते, समाज को बेहतर बनाने में मदद नहीं करते, तो अपने भी उन्नति नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं ना, अगर किसी के ऊपर ग्रहचार्य बैठा हुआ होता है तो कहते हैं दान करो, भूदान करो, गोद, तो कुछ ना किसी रीति से दान करो, दान पुण्य करोगे तो फिर अपने ऊपर के ग्रहचारी टल जाएगी या निकल जाएगा। तो अगर भगवान ने कुछ दिया है हमें, तो वो हमें शेयर करने की जरूरत है। तो इसलिए हर धर्म में भी ये कहते हैं 10% जो हमारी आमदनी है उसमें से 10% हम दान पुण्य में खर्च करना चाहिए, उसको यूज करना चाहिए। जितना हमारी एनर्जी बहता है फिर उसको फिल होना शुरू होता है। अगर हम स्टैग्नेंट रखते हैं, जैसे पानी स्टैग्नेंट होता है तो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, बहता पानी शुद्ध रहता है ना। अगर भगवान हमें कुछ दे रहे हैं, अगर मैं अपने लिए रखूं, सेल्फिश होकर के, स्वार्थी होकर के मैं अपने यूज के लिए ही रखूं और उसको बहने ना दूं, तो फिर और भरेगा नहीं, वो गंदा हो जाएगा, या फिर वो गलत कार्यों में यूज होना शुरू हो जाएगा, या फिर कोई ना कोई कठिनाई या कोई ना कोई चैलेंजेस जीवन में आना शुरू हो जाता है। इसीलिए अपने एनर्जी को बहने देना चाहिए, दूसरों को अपने पास जो भी चीज है उसमें उससे हमें सहयोग देने की जरूरत होता है।
जी जी, बहुत सुंदर। हम भी बहते रहेंगे, देते चलेंगे, ताकि हमारा विश्व बेहतर से बेहतर बने। आपके मन में इन सारी चर्चाओं को सुनते हुए, बातों को सुनते हुए मन में कई प्रकार के प्रश्न जरूर पैदा हो रहे होंगे, तो आप अपने प्रश्न भी तैयार रखें। आपको भी हम आमंत्रित करेंगे इस डायलॉग में कि आप एक अभिन्न अंग हैं, तो आप भी अपनी बात रख करके जो भी प्रैक्टिकल इसके लिए बातें और सिचुएशंस हो सकती हैं, चैलेंजेस हो सकते हैं जो आपके मन में आ रहे हैं, जिन्हें आप फेस कर रहे हैं, वो भी हमारे इन विद्वान वक्ताओं के सामने रख सकते हैं, ताकि यहां से एक क्लियर विजन लेकर के और साथ ही एक इनिशिएटिव लेकर के, एक जिम्मेवारी का भाव लेकर के हम इस सत्र के बाद जा सकें। स्नेहा जी, क्या छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं? एक होता है कि हम बहुत बड़ी बड़ी चीजें सोचते हैं कि ठीक है, विश्व एक बेहतर हो, बहुत बड़ी बात है। वैसे तो हम जानते हैं कि दीप से दीप जलते हुए ही सारा ही संसार प्रकाशित होगा। लेकिन मैं एज अ यूथ, जब मैं अभी पढ़ रहा हूँ या जॉब कर रहा हूँ, छोटी उम्र का हूँ, मैं ऐसी क्या छोटी छोटी चीज़ें अपने जीवन में कर सकता हूँ, शुरुआत कर सकता हूँ, जो एक बेहतर समाज के लिए, औरों के लिए प्रेरक हो सकता है और वो मेरा एक सुंदर योगदान भी हो सकता है।
जी, जब मैंने अपनी लाइफ की शुरुआत की थी और अभी मैंने बताया कि मुझे मेरे घर से सपोर्ट नहीं मिला, पर थैंक्स टू गॉड मुझे इतने अच्छे फ्रेंड्स और हेल्पिंग हैंड मिला, वो चैन मैं कायम रख रही हूँ। मैंने भी बहुत छोटे से शुरुआत की थी, बड़ा प्लेटफॉर्म मिला था स्टोरी के साथ, ये कैसे क्यों नहीं होना चाहिए और हमें कितनी तकलीफ होती है हमारी आईडी जाने के बाद या इतने स्कार्स के बाद। जैसे मैंने शुरुआत की थी, जो भी मेरे आसपास थे मैं उनको अवेयर कर रही थी, देखिए ये बर्न से इतने इतने प्रॉब्लम्स होते हैं, इस वजह से आप ख्याल रखिए आपके फैमिली में ये घटना ना घटे, आपकी बहन के साथ ना घटे, आपके रिलेटिव्स के साथ ना घटे, आपकी दोस्त के साथ ना घटे। वो धीरे धीरे बढ़ता गया और इंटरनेशनल लेवल तक मैं इस सब्जेक्ट को लेके जा पाई। सेम थिंग, मैं लेडी हूँ तो मेरे बॉडी का एक रूटीन लाइफ है, तो इसमें मैंने जब देखा था हमारे एरिया में 980 चौल के घर है, उसमें से एक लेडी को यूरिन इन्फेक्शन होके उसको एक तरह का डिजीज होना शुरू हो गया था, और उसके लिए मैंने ख्याल रखा था उसका ट्रीटमेंट होने के बाद कि ये नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं अपनी तरफ से जितने हो सकती हूँ मंथली सैनिटरी नैपकिन्स दान करना चाहूँगी, उनको हेल्प करना चाहूँगी ताकि वो लेडी का रूटीन बॉडी अच्छा रहे। तो हेल्थ वाइज मैंने वो अपना चेंज शुरू किया था कि मुझे बेटर वर्ल्ड के लिए हेल्थ वाइज भी मैं क्या कर सकती हूँ, तो मैंने यहाँ से शुरुआत की है। 400-500 तक हम उस लेडीज को नैपकिन्स प्रोवाइड कर सकते हैं। बच्चों के लिए, बच्चे छोटे हैं, उनको हर तरह के टीके नहीं मिल पाते हैं, ये चीजें गवर्नमेंट के इसमें फ्री दी जाती है, बट बहुत हद तक वो छोटी छोटी जगहों पे नहीं पहुंचती है, तो उनको उनके दरवाजे तक, डोर स्टेप तक पहुंचा के या उनको हॉस्पिटल तक पहुंचा के बच्चों को टीके कैसे दे सकते हैं, उस पर काम शुरू किया है। और अब लोग खुद फोन करके पूछते हैं, स्नेहा ताई, स्नेहा दीदी हमारे बच्चों को भी टीके देने हैं, कहां जाए, क्या कर सकते हैं। तो वो मैसेज सब तक पहुंच चुका है कि लोग कनेक्ट हो पा रहे हैं। डाउरी विक्टिम्स हो या किसी भी तरह का अब्यूज हो, उसके लिए संवैधानिक आपके पास बहुत सारी जानकारी है, कायदे से जानकारी है, जो आपको संविधान नहीं पता है। कल भी मैंने सुना था स्व संविधान के साथ संविधान की ओर, तो हाँ ये तो नया संविधान स्टार्ट करेंगे जो आप सभी के लिए होगा, बट जब तक आपको आपके अधिकार नहीं पता है, आप मांगोगे क्या, आप डिमांड क्या करोगे, तो संविधान भी पढ़िए, उस संविधान को भी लोगों तक पहुंचाने का काम हम अपनी तरफ से छोटी मोटी शुरुआत कर चुके हैं, पर हम वो कर चुके हैं। यूं तो मैं अकेली ही चली थी जाने पे मंजिल की ओर, वो तो लोग आ रहे हैं और कारवां बनता जा रहा है। तो आप सभी का योगदान चाहिए, आज के युवा कल का भविष्य है। आप युवक बहुत बार कहते हैं, युवक हो इसलिए मैं ये बात बोलती हूँ, गर्लफ्रेंड्स तो सभी की होती है मोस्टली, तो लड़के लोग बहुत बार कहते हैं या लड़कियां भी कहती हैं कि मेरा प्यार कभी हारता नहीं या मेरा प्यार कभी हारता नहीं, तो मैं कहती हूँ आपका प्यार इलेक्शन क्यों नहीं लड़ता, आप तो हारोगे ही नहीं ना, तो वो चेंज अपने आप से शुरू कीजिएगा प्लीज।
बहुत सुंदर स्नेहा जी, जब आपने प्यार की बात कह दी तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सी बात है, जब हम नए विश्व की बात करते हैं, बेटो वर्ल्ड की बात करते हैं, तो एक बाह्य प्रयास जो हम अभी समाज में देख रहे हैं, एक समाज सेवा की ओर या फिर समाज की बेहतरी की ओर हम सबका लक्ष्य होता है, लेकिन एक गहरी सी बात है कि यदि जीवन में मूल्य हैं तो वो कहीं हमारे जीवन को भी ज्यादा मूल्यवान और बेहतर बनाता है और समाज को भी मूल्यवान बनाने में मददगार होता है, ऐसा मैं मानता हूँ, विश्वविद्यालय ये मानता है, और यही कारण है कि अगला जो आप लोगों का रहेगा आपस में डिस्कशन वो वैल्यूज के ऊपर ही है जिस पर आपको चर्चा करनी है। रामकृष्ण भाई जी, मैं जानना चाहूंगा कि ये जो मूल्य हैं, ये मूल्य हमारे बेहतर विश्व के साथ कैसे जुड़े हुए हैं, जब हम एक बेहतर विश्व कहते हैं तो इनमें मूल्यों की क्या भूमिका है और ये मूल्य क्या क्या हो सकते हैं।
अगर हम देखते हैं कि यह विश्व का आधार ही मूल्य के साथ है, जो शक्ति के स्रोत है, उदाहरण के तौर पर सूरज है, सूरज का जो अस्तित्व है वो सदा कंटिन्यूअसली 24/7 देते ही जाता है। आज आप अशोक भाई सुबह एक बात कह रहे थे, हम थोड़ा पानी भरना चाहे तो कितना समय लग जाता है, प्रकृति एक मिनट में सारे सरोवर भरती है। आज के दिन देने के भाव, नेचर प्रकृति में पूरी तरह से देने के भाव ही है, परमात्मा में देने के भाव है, और वृक्षों को देखते हैं तो फल देते हैं, देने के भाव। ये सारे विश्व मूल्यों के आधार पर ही चल रहा है। और हम भी अपने आप को भी देखते हैं तो बचपन से ही जब हम अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे शुरुआत मूल्यों से ही होती है। जहां पर भी हम मूल्यों के विरुद्ध कुछ भी चल रहा है वहां हमारे लिए वो जो लिटिल माइंड के लिए वो एक शॉक जैसा है। हर व्यक्ति के अंदर दो प्रकार की क्वालिटीज है, एक होता है इनेट जो स्वाभाविक है, अपने आंतरिक है, दूसरा होता है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड माना बाहर से हमारे अंदर आए हुए कुछ चीजें। ये इनेट, ये एक्वायर्ड में ऊपर नीचे हो सकता है मगर इनेट में ऊपर नीचे नहीं होता है। वो इनेट क्वालिटीज हमारे हर व्यक्ति के अंदरूनी मूल्य है। एक बार हम बैठे अपने साथ, हम किन मूल्यों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, डीपली अपने कोर से बात करें और वो मूल्यों को बाहर निकाले तो भरपूरता, एक प्रकार की पावरफुल स्टेट हम महसूस करेंगे। और जहां भी छोटे छोटे मूल्यों के कॉम्प्रोमाइज जो हमारे अंदर होता है वो सारा एक्वायर्ड है, दुनिया को देखते हुए, इन्फ्लुएंस में, इन सब चीजों में आए हुए हैं। जैसे ही हम अपने कोर से कनेक्ट हो जाते हैं तो बाह्यता आसानी से हमारे अंदर से निकलना शुरू हो जाता है। अब आते हैं हम विश्व परिवर्तन की ओर। एक बार आप देखिए, दुनिया में जहां पर भी कॉम्प्रोमाइजेस, डिफिकल्टीज हम देख रहे हैं, मूल्यों का कॉम्प्रोमाइज, वहां उस देखते हुए हमारे अंदर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है ये महसूस होता है, वो फीलिंग आता है। सारे आंखें ढूंढ रहे हैं, किसके लिए ढूंढ रहे हैं, उन व्यक्तियों को जो ऐसे सिचुएशंस पे भी हम उनके मूल्यों के साथ खड़े हुए हैं, कॉम्प्रोमाइज नहीं हुए, स्ट्रांगली, स्टेबली और स्ट्रांगली खड़े हुए, उन पर्सनालिटीज के लिए तरसते हुए सारी दुनिया ढूंढ रही है। हम ये सोच सकते हैं एक यूथ है, एक कॉर्नर में है, हम क्या विश्व का परिवर्तन। सारे विश्व के परिवर्तन के जो भी मूवमेंट्स हुए हैं वो सारे ये कोने में बैठे हुए कोई एक व्यक्ति ने ही किया है। गांधी जी को एक बहुत ही, उनके लाइफ में ऑटोबायोग्राफी आप देखेंगे तो बहुत आश्चर्य लगेगा, गया एक बहुत टिमिड पर्सन है, खड़े होकर दो व्यक्तियों से बात करने में भी शर्म फील करते हैं और कभी सभा में बात किए ही नहीं। उस ऐसे व्यक्ति को ट्रेन से बाहर फेंका गया तो वो एक व्यक्ति ने सारे ब्रिटिश एम्पायर को उस देश से बाहर फेंक दिया। एक व्यक्ति, एक मूवमेंट को इग्नाइट कर दिया। एक हेल्पलेस स्टेज है, एक कई जंगल में झाड़ों को पूरा काटा जा रहा है तो वो सारे लोग बहुत हेल्पलेस फील किए, क्या करना समझ में नहीं आ रहा, रिक्वेस्ट कर रहे, फाइट कर रहे, कुछ भी नहीं हो पा रहे। फिर फाइनली एक व्यक्ति ने खड़ा होकर कहा, चिपको, माने सारे लोग जाके झाड़ों को पकड़ के आलिंगन कर लिए, अब आपको झाड़ को काटना है, पहले मुझे काटना है फिर झाड़ को काटोगे। जहां पर भी वो झाड़ को काटने के लिए जा रहे हैं सब लोग जाके चिपक रहे हैं। एक कॉर्नर में हुआ, एक व्यक्ति से, सिंपल थॉट से, एक हेल्पलेस स्टेज में से निकला। अब एक भी ऐसे एनवायरमेंट कॉन्फ्रेंस नहीं है ग्लोबल में जहां पे इस चिपको मूवमेंट के बारे में नहीं डिस्कस किया जाता। एक व्यक्ति नहीं है, एक व्यक्ति में सारा संसार भरा हुआ है। हमारा एक बॉडी का सेल सारा बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। उस एक सेल से आप सारा बॉडी को अंडरस्टैंड कर सकते हो, सेल एक सेल को से बॉडी को ट्रांसमिट कर सकते हो। हम भी इस सारे विश्व के लिए एक सेल है, आप कोई साधारण नहीं हो। एक विवेकानंद एक साधारण व्यक्ति ढूंढते ढूंढते पहुंचा है, रास्ता मिला, एक फीलिंग आई, एक परिवर्तन आया, उस परिवर्तन को अपने तक सीमित नहीं रखा, सारे विश्व को फैलाने के लिए निकल गया। उनको पता था कहां हम ले जाएंगे तो कहां तक पहुंच सकेगा। आज के दिन इतने सालों के बाद एक 30 ईयर्स की एज की एक छोटा सा व्यक्ति, 25 ईयर्स से स्टार्ट किया हुआ लाइफ, 30 ईयर्स तक उसका लाइफ का मिशन कंप्लीट हो गया है, चला भी गया, कितना परिवर्तन आज दिन तक भी हर एक जगह उनके बारे में सोचा जाता है। आप भी साधारण नहीं हो। साधारण समझना सबसे बड़ा सिन है, सबसे बड़ा पाप है खुद को बहुत नीच दृष्टि से देखना, खुद को बहुत ऊंचे नजर से देखना और खुद के अंदर की क्षमताओं को बाहर लाना। तपस्या ऐसे करे कि आपकी वाइफ से बुद्ध, गौतम बुद्ध एक जगह से दूसरे जगह चल रहे थे, सारा ही जिस स्थान पे गए वो सारा स्थान को परिवर्तन कर दिया। इतना पावर, इतना शक्ति हर आत्मा के अंदर है। परमात्मा कहते हैं आप खुद को पहचानो तो दुनिया को परिवर्तन कर सको।
बहुत सुंदर, स्वयं की पहचान। स्वामी विवेकानंद जी की ही बात, वो कहा करते थे कि यदि खुद से प्रतिदिन आप नहीं मिलते तो एक बहुत ही महान व्यक्तित्व से मिलने का अवसर आप गंवा देते हैं। हमारी इनिट क्वालिटी की बात रामकृष्ण जी ने कही, हमारे अंदर अनंत योग्यता, क्षमता, विद्वता विद्यमान है, बस आवश्यकता है उसे जागृत करने की। और हम जग गए तो फिर विश्व तो अवश्य जगेगा ही, परिवर्तित होगा। सुमन बहन जी, आपसे ये प्रश्न है कि अपने आप को हम कैसे जागृत कर लें, ये जो एक जागृत अवस्था है। कई बार जब हम समाज में देखते हैं, अपने साथियों को देखते हैं और युवाओं को देखते हैं, तो बहुत सारी नेगेटिव एक्टिविटीज में वो लगे हुए हैं, शॉर्टकट अपना रहे हैं और सफलता भी प्राप्त कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि वो लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, फुल एंजॉय कर रहे हैं, तो उसकी ओर सहजता से हम आकृष्ट हो जाते हैं। तो ये जो एक अंदर की पहचान, अंदर के मूल्य हैं, अपने आप को एक रोल मॉडल बना के समाज और दुनिया के लिए कुछ करने का जो हमारा एक संकल्प है, वो कैसे सतत कायम रहे, कैसे हम इसे सींचें, कैसे ये चीज हमारे जीवन में साकार हो जाए। आपने जो साकार किया है और अनेकों के लिए आप रोल मॉडल बन गई हैं आज, तो उस अनुभव के आधार पर हमारे युवाओं को जरूर मार्गदर्शन करें।
हाँ, अभी वर्तमान समय बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं क्योंकि वातावरण ऐसा है और उस तरफ अट्रैक्शन हो जाना या फिर थोड़ा अपने पथ से डिस्ट्रैक्ट हो जाना ये स्वाभाविक है, लेकिन पुनः बार बार खुद को अपने लक्ष्य को याद दिलाने की ज़रूरत होता है। मुझे अपने ज़िंदगी में क्या चाहिए, क्या हासिल करना है, वो बार बार खुद को याद दिलाने की ज़रूरत होता है। और दूसरी बात यह है कि जो जिस तरफ भी हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो वो तो चकाचौंध है ही, वहाँ बहुत खुशी है, वहाँ बहुत एन्जॉयमेंट है, लेकिन जो भी वो एन्जॉयमेंट है वो अल्पकाल है, वो शॉर्ट लिव्ड है, तो वो लंबे काल के एन्जॉयमेंट नहीं हो सकता क्योंकि उस क्षण के लिए वो एन्जॉयमेंट है, लेकिन जिंदगी में फिर आगे बढ़ना है या फिर कुछ हासिल करना है तो वो हमारे लिए डिस्ट्रैक्शन ज़रूर हो जाता है। तो इसीलिए हमें ये पहला डिसाइड करना होगा कि ये पहचानना होगा कि मुझे चाहिए क्या जिंदगी में, केवल ये सुपरफिशियल हैप्पीनेस जो है वो चाहिए या सचमुच में जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहती हूँ। जिन्होंने, अगर हम देखते हैं समाज में जिन्होंने भी बहुत बड़ी मंजिल को हासिल किया है, उन्होंने बहुत बड़े त्याग भी बड़ा त्याग किया है। त्याग के बिना भाग्य नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए मुझे IAS एग्जाम पास करना है तो अगर मैं रोज रात को पार्टी करूं तो IAS एग्जाम में पास नहीं कर सकती हूँ। तो अगर मेरा मंजिल वो है, लक्ष्य है कि मुझे IAS करना है, तो मुझे कुछ त्याग भी करना होगा तब जाकर के उस बड़ी मंजिल को मैं हासिल कर सकती हूँ। तो ऐसे ही जिंदगी में कुछ भी अगर कुछ लक्ष्य रखते हैं तो वो थोड़ा सा होलिस्टिक होना बहुत ज़रूरी है। केवल सुपरफिशियल या फिर फिजिकल लक्ष्य जैसे IAS करना या कुछ ऐसे एजुकेशन में एक बड़ा लक्ष्य रखना वो बहुत अच्छी बात है, वो भी रखना ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ मैं अपने आंतरिक शक्तियों के विकसित करूँ, उसका भी हमें लक्ष्य रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर जब तक मैं अपने आत्मा की सशक्तिकरण जब तक ना करूं, केवल फिजिकल या सुपरफिशियल प्रोग्रेस के बारे में सोचो, तो फाउंडेशन अगर मजबूत ना हो तो फिर अगर वो सुपरफिशियल चीज भी मैं हासिल करने के बाद भी मैं संतुष्ट नहीं हो सकती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा लक्ष्य है इंजीनियर बनना है, ठीक है, लेकिन कैसा इंजीनियर बनना है वो मेरा लक्ष्य हो. हजारों लाखों लोग इंजीनियर्स हैं इस दुनिया में, लेकिन इंजीनियर कैसे इंजीनियर बनना है वो लक्ष्य. डॉक्टर बनना है ठीक है, लेकिन कैसा डॉक्टर बनना है वो हमें वो लक्ष्य रखने की जरूरत है. तो वो फिर ओलिस्टिक जब डेवलपमेंट होगा तो फिर मैं समाज को मैं कुछ दे सकती हूँ. डॉक्टर बन करके मैं समाज सेवा तो कर ही रही हूँ, लेकिन फिर अगर मेरे अंदर वैल्यू नहीं है, कंपैशन नहीं है, करुणा भाव नहीं है, तो मैं मनी माइंडेड हो जाऊंगी. केवल पैसों के लिए मैं डॉक्टर बन जाऊं ये ना हो, लेकिन कंपैशन जब जहां है तो मैं पैसों के लिए नहीं लेकिन इंसानियत के नाते मैं मदद करना शुरू करती हूँ. तो इसलिए वैल्यूज को फाउंडेशन बना करके फिर दूसरी चीजों को उसके आधार से उसके ऊपर फिर हम बिल्ड करें, तो फिर हम भी खुश रहेंगे, तो फिर हम उसके साथ साथ समाज को भी हम देते रह सकते हैं.
बहुत सुंदर. निश्चित रूप से एक रोल मॉडल बनना हम सबके जीवन का ध्येय भी होता है, होना भी चाहिए. हमें देख करके लोग प्रेरित हों, सीखें और अपने जीवन को भी उस अनुसार बनाएं, ये जीवन की सार्थकता होगी. मूल्यों के साथ मूल्यों की चर्चा हो रही है और हमने देखा कि एक बेहतर विश्व की जब हम बात करते हैं स्नेहा जी, तो मूल्य बहुत बहुत आवश्यक और मूल्यनिष्ठ समाज ही एक बेहतर समाज है, ये हम जानते हैं. लेकिन उन मूल्यों की धारणा के लिए बड़ी चैलेंजेस हैं आज लाइफ में. इन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करें? मैं ईमानदारी से अपने जीवन में कार्य करना चाहता हूँ, सच्चाई से कार्य करना चाहता हूँ, या बहुत ही अच्छी जो क्वालिटीज़ हैं उन क्वालिटीज़ को अपने जीवन में लाना चाहता हूँ, लेकिन ये बात सुनने में आती है कि मैं तो अच्छा बनना चाहता हूँ लेकिन लोग मुझे अच्छा नहीं बनने देना चाहते. यहाँ आपके सामने भी बहुत सारी चैलेंजेस आए होंगी, बातें आई होंगी. कैसे इस बात को ओवरकम करके हम अपनी वैल्यूज को अपने जीवन में सतत लेकर आगे बढ़ें ताकि एक बेहतर विश्व की हम नींव बन सकें, आदर्श बन सकें?
जी, बहुत सही बात है कि आपके मूल्य क्या है उसके ऊपर आपका जीवन रहता है. मैं बहुत सिंपल तरीके से इसको कहती हूँ. आप अपने विचारों के धनी, ओनर, मालिक होने चाहिए. आपके विचार रेंट के नहीं होने चाहिए. रेंट तो 11-11 महीने में घर बदलता है, तो विचार भी उसी तरह से बदलते रहेंगे. आप किसी के विचार से प्रेरित होते हो, उसको अपने डीप इतना अंदर तक रखो कि वो आपका अपना हो जाए. उस थॉट को अपने तरीके से, अपने लाइफ से उसको अपने साथ ले लो कि उसके साथ आप आगे बढ़ पाओ. मूल्य बदलते, लोग कहते हैं कि मैं तो अच्छा हूँ पर लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया. अगर आप इतने अच्छे हो, आप एक ब्रांड हो, आपका थॉट एक ब्रांडेड है, तो क्या किसी क्षुद्र तुच्छ किसी के डर्टी थॉट की वजह से आपकी अच्छाई बदले, वो ब्रांड किस काम का? तो मैं जब कहती हूँ मैं ब्रांड हूँ, मेरे विचार मेरे ब्रांड है, मैं अपने विचारों की धनी हूँ, तो मुझे कुछ भी हो जाए, पहली सीढ़ी सफलता की होगी. कोई जरूरी नहीं होता है हर बार असफलता भी आती है, तो असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है. जहाँ आप असफल हो गए, जहाँ रात आ गई, आप सोच लो कि अगली सीढ़ी जो है वो उजाला है, आपको चमकना ही है. तो थोड़ा पेशेंस रख के आगे चल के काम कीजिए. जैसे मैंने कहा मेरे चेहरे पे बहुत स्कार्स है, तो उसी को जापनीज में एक कला है, निराशा से आशा की ओर कहते हैं, जिसे किंत्सुकी कहते हैं. उसमें आपका कोई भी बर्तन टूट जाता है तो वो लोग फेंकते नहीं है, एक ग्लू के साथ, गोल्डन पाउडर के साथ उसको जोड़ते हैं. उसके स्कार्स दिख के आते हैं बट वो चीज़ दोबारा पहले से ज्यादा मजबूत हो जाती है और वो खूबसूरत स्कार्स दिख के उसका एक अलग डिजाइन आता है। तो जितने बर्तन जितनी चीजें टूटती है वो हर अलग अलग तरह से टूटती है, उसके ऊपर आने वाला स्कार्स अलग है। आई एम ब्यूटिफुल बिकॉज अब मैंने अपने स्कार्स को ब्यूटिफुल बनाया है। पहले मैं कहती थी, आज आप में से लोग कहते हैं आप ब्यूटिफुल हो। तो वो स्ट्रांग है डक के चली थी मैं। मैंने जीवन में जब व्यक्ति आता है वो सब कोई ऐश्वर्या राय जैसे खूबसूरत नहीं आते, उसकी अपनी अलग खूबसूरती है। तो आप अपने आप में वो चीज ढालिए तो आपके मूल्य, आपके जो विचार है, आपकी जो धारणा है, इतनी स्ट्रांग रखो कि वो नहीं जानी चाहिए। आप सुबह ही, हम जब चाय पीने के लिए बाहर आए थे, मेरे दी ने वो बड़ा सा पहाड़ पत्थर देख के बोला कितना खूबसूरत पत्थर है ये। उनको वो पत्थर में भी ब्यूटी पता चली, उनको वो खूबसूरती पता चली। तो ब्यूटी का कॉन्सेप्ट आपके मूल्य में भी होना चाहिए, आपके विचारों में भी होना चाहिए। इसीलिए कोई क्या कहता है, लोग क्या कहेंगे, ये भी आप सोचोगे तो आप क्या करोगे। तो लोगों का काम है कहना, कहने दीजिए। आप अपने पथ पे चलते रहिए, आप कामयाब रहेंगे। छोटे छोटे चैलेंजेस का आना जरूरी है। जब छोटे छोटे चैलेंजेस से आप उभर के आते हो तो आप एक स्टेज पे बैठ के उस स्टोरी को बताते हो। हाँ, इतने सारे चैलेंजेस को फेस करके यहाँ आए हैं, वही चीजें हम आगे की पीढ़ी को बता रहे हैं कि वो एग्जाम्पल आपके साथ रहो, आप उसको लो, आप हमारे अनुभवों को लो और आप अपना नया अनुभव अपने साथ शेयर करो। कल को हम वहां बैठ के आप लोगों का अनुभव देखना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे। तो आज मैं आपसे कहती हूँ, आपके मूल्य यहाँ से जाने के टाइम इतने स्ट्रांग करके लेके जाइए कि मैं कहीं से भी आपको एक दिन जरूर देखूं और मैं बोलूंगी कि मैं वहां गई थी और मैंने इस बच्चे को देखा था या मिली थी। तो आज एक शपथ लेके जाइए यहाँ से, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिला है।
तो आप में से कौन कौन अगली बार इस मंच पर आना चाहेंगे अपने अनुभव के लिए, जरा हाथ तो उठाएं। हाँ, युवाओं की तरह। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक बार जोरदार तालियां अपने लिए ही, क्योंकि आप सब भी अभी वहां बैठे हुए भी अपने आप को तैयार कर रहे हैं और तैयार हैं भी, और तैयार हो जाएं प्रश्न के लिए भी। जैसे मैंने कहा था कि आपके मन में जो भी प्रश्न हैं, बातें हैं आज के इस विषय को लेकर, आप आमंत्रित हैं, आप सामने आ सकते हैं और अपने मन की बात विषय से जुड़े हुए रख सकते हैं। प्लीज कम, एक माइक सामने दीजिएगा। और बहुत सुंदर बात स्नेहा जी ने कही, अपने जो विचार हैं, अपने जो मूल्य हैं, उन्हें हम ब्रांड बना लें। यदि सामने वाला व्यक्ति अपनी नेगेटिविटी से, अपनी बात से हमारी ब्रांड को धूमिल कर देता है तो वो ब्रांड ब्रांड ही क्या। इसीलिए अपनी अच्छाई, अपने मूल्य के साथ डटे रहें, जीत हमारी ही होगी, एक बेहतर विश्व का निर्माण होगा। और हमारी बहन के लिए एक बार तालियां, जो शुरुआत में ही आ गई है अपने सुंदर प्रश्न को लेकर के। हमारे तीनों पैनलिस्ट विद्वान वक्ता हैं, आप जिनसे भी प्रश्न करना चाहती हैं आप।
ओम शांति, आई एम ऐश्वर्या। मेरा क्वेश्चन रामकृष्ण सर से है। सो क्वेश्चन ये है कि देर आर डिफरेंट टाइमलाइंस देर आर सेट बाय सोसाइटी फॉर यंगस्टर्स स्पेशली, कि यू हैव टू कंप्लीट योर एडुकेशन बाय अ सर्टेन एज, यू हैव टू गेट मैरिड बाय अ सर्टेन एज, योर करियर, यू हैव टू बी एट अ सर्टेन स्टेज इन योर करियर बिफोर गेटिंग मैरिड। बट अ लॉट ऑफ टाइम्स इट डज नॉट हैपन लाइक दैट। A lot of times you complete your education late, you get married early, some people get married early, some people are not in that stage of their career where they are ready to step into another stage of life. So I want to ask how to not get succumbed to this pressure and how to not let it affect your vision that you have for yourself. Thank you.
It's a very good question and let me tell you one thing. Isme hamare jo bhi pressures hai, ओके बल हमारे लिए वो प्रेशर है, मगर उस प्रेशर के पीछे एक गुड विश है। ओके हम पहले वो जो पेरेंट्स की या जो फैमिली की या क्लोज्ड रिलेटिव्स की जो भी प्रेशर है, उसमें हमारे लिए एक बहुत पॉजिटिव गुड विश है। ओके ताकि हम बहुत क्विकली अच्छी तरह से सेटल हो जाए, जैसे उनके लाइफ स्मूथली चल रही हो वैसे हमारा लाइफ भी हो जाए, इस प्रकार की गुड विश है। फर्स्ट ऑफ ऑल उस गुड विश को गुड विश के रूप में हमें स्वीकार करना चाहिए, दैट विल बिकम योर पॉजिटिव एनर्जी। फिर नेक्स्ट, इसमें आपका एक चॉइस है। आप लाइफ में कई प्रकार की ड्रीम्स के साथ या सोशली फिक्स किया, फैमिली में फिक्स किया हो नॉर्म्स है, एजुकेशन का एज, या करियर का एज, मैरिज का एज, जो भी उन्होंने फिक्स किया, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके वो जो भी फिक्स किए हैं, हु इज द अल्टीमेटली उसका इफेक्ट किसके ऊपर आने वाला है? आप ही के ऊपर आने वाला है. तो चॉइस किसका होना चाहिए? आप ही का चॉइस होना चाहिए. आप अपना चॉइस को एग्रेशन के बिना एसर्टिवनेस से कैसे एस्टैब्लिश करते हो, वो स्किल आपको सीखना होगा. हर युवा को यह स्किल सीखना होगा. उस शुभावना को स्वीकारते हुए आपकी जो चॉइस है, क्योंकि एंड इफेक्ट आपके ऊपर ही आने वाला है हर चीज का, उस चॉइस को बहुत नम्रतापूर्वक और बहुत एसर्टिवली अपने आप पर कैसे एस्टैब्लिश करते हो, नंबर वन. और नंबर टू, एजुकेशन का जो टाइमलाइंस है वो अगर टाइमली पूरा नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारा ही कारण है. थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट इनिशियली अर्ली स्टार्ट करें लाइफ को, और उसका एफर्ट्स भी अर्ली करें, और लाइफ में करियर और फाइनेंशियल का प्लानिंग एजुकेशन के समय से ही शुरू हो जाना चाहिए. एक होता है डिपेंडिंग माइंड, डिपेंड होने का माइंडसेट, एक होता है इंडिपेंडेंट माइंडसेट. जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है वो अर्ली स्टार्ट होना चाहिए. मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, अक्सर करके प्रॉब्लम्स में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स युवा के लिए आते हैं. अरे भाई, एक सेवंथ क्लास के स्टूडेंट को टेंथ क्लास स्टूडेंट वाला पढ़ा नहीं सकेगा, एक इंटरमीडिएट स्टूडेंट टेंथ क्लास वाले को नहीं पढ़ा सकता है, एक ग्रेजुएट जो कर रहा है ग्रेजुएशन में है वो इन सबको नहीं पढ़ा सकता है. फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, मगर आप खुद को एस्टैब्लिश करना है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ. स्टार्ट अर्ली, ओके. और दूसरी बात, शादी या लाइफ का सेटलमेंट, करियर का कितना टाइम होना चाहिए, इट इज प्योरली योर चॉइस. जल्दीबाजी नहीं करें, सोचे, स्टेबलाइज करें अपने आप को मेंटली फिजिकली. क्या हम रिलेशनशिप के लिए मैच्योर हुए हैं, मेंटली और साइकोलॉजिकली प्रिपेयर हुए हैं? वो प्रिपरेशन के बिना जल्दीबाजी में जाते हैं, वहां सारे कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाते हैं. थोड़ा स्टेबलाइज करें अच्छी तरह से. और दूसरी बात है, अगर मैं ये कहूं, शायद ये गलत नहीं होगा, क्योंकि आज के जमाने में युवा अक्सर इस प्रकार सोच रहा है, और ये बहुत अच्छी सोच है, सिर्फ अपने लिए नहीं जीना है. मैं कई यूथ को मिलता हूं, सभी के मन में ये संकल्प है, सिर्फ अपने लिए नहीं जीना है, कुछ करना है. हमारा एक पर्सनल लाइफ भी हो, साथ साथ एक पर्पसफुल लाइफ भी हो, और उसकी शुरुआत रिटायरमेंट के टाइम में नहीं, लाइफ की बिगिनिंग स्टेज से ही हम इसको शुरुआत करें. याद रखिए, चॉइस आपका है, और उसको बहुत नम्रता से, एग्रेशन से नहीं, बहुत नम्रता से और एसर्टिवनेस से अपने आप को एस्टैब्लिश करना है. ओम शांति.
शुक्रिया. जो भी हैं भाई यहाँ आ जाएं, या फिर सामने आप बैठ सकते हैं, जिनके प्रश्न हैं वो सामने बैठ जाएं. और प्रश्न होते ही फिर दूसरे हमारे जो भाई हैं वो भी आ जाएं, अपना नाम और स्थान बता के संक्षेप में अपना प्रश्न.
मेरा नाम सुधांशु है, मैं दिल्ली से आया हूँ. मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे हम देखते हैं आज कॉलेज में, जब भी हम जाते हैं तो देखते हैं मोस्टली अगर 40 बच्चे हैं तो उसमें से 38 बच्चे जो है ड्रिंकिंग और स्मोकिंग ये सब करते हैं. तो ऐसा भी नहीं सोच सकते कि मान लो चलो हम इनसे दोस्ती नहीं करते, इनसे दूर रहते हैं, ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर जा रहे हैं क्लास में तो सोशलाइज तो करना पड़ता है. तो उनके इन्फ्लुएंस से कैसे मतलब अपने आप को अवॉइड कर सकते हैं? जैसे सोशलाइज मेनली वो तभी करते हैं जब जैसे स्मोकिंग करने जा रहे हैं तो बॉन्डिंग बनती है, तो ना चाहते हुए भी एक बच्चा सोचता है कि चलो हम भी करते हैं, तो उस हिसाब से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं?
जी स्नेहा जी,
मैं अपना एग्जाम्पल यहाँ बताती हूँ. मैं एडिएटेड ड्रिंक्स नहीं पीती, सोडा कोक से रिलेटेड जो होते हैं. शुरू में कहती थी तो लोगों को थोड़ा मजाक लगता था, बट अब जो मुझे जानते हैं वो जब अपने लिए जूस ले कोल्ड ड्रिंक्स लाते हैं, मेरे लिए नॉर्मल जूस लेके आते हैं. वो वहाँ से यहाँ तक का जर्नी है कि उन्होंने अब सोच लिया ये नहीं पीती है तो इसको नॉर्मल जूस, फ्रेश जूस दिया जाए तो वो पियेंगी. ये ठीक है कि वो दोस्ती नहीं करेंगे, तो क्या उनके दोस्ती के बगैर आपका लाइफ रह रहा है? आप कॉलेज आने तक उन्हीं के साथ आप दोस्त थे? नहीं. तो अभी भी मैंने बोला आप अपने विचारों के धनी मालिक बन जाओ, आप इतने स्ट्रांग रखो, उनके साथ खड़े रहने से भी वो स्मोक से आपके शरीर में जाने वाला है. जितना उन पर अफेक्ट कर रहा है उतना ही आपके ऊपर भी अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि आप सांसें ले रहे हो. जब आप दूर खड़े हो जाओगे ये मेरे हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं. आज उनका फ्री स्मोक का वो धुआं लेके आप खड़े हो दोस्ती निभाने के लिए, कल आपको आपके पैसे देने हैं, आपके परिवार को तकलीफ आपकी वजह से होने वाली है. तो ऐसी दोस्ती किस काम की, ऐसा सोशल सर्कल किस काम का, आप बताओगे?
नहीं बट वो तो ठीक है, बट एक फैक्टर ये भी हो जाता है, जैसे हमें सोशलाइज तो करना पड़ता है, जैसे ग्रुप प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो ना चाहते हुए दोस्ती तो हो जाती है, बट फिर वो इन्फ्लुएंस भी ना चाहते हुए संगत का असर तो आ ही जाता है।
नहीं,
तो उस हिसाब से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं?
इन्फ्लुएंस तब होते हैं जब आप कमजोर पड़ते हो, आपके विचार कमजोर पड़ते हैं, आप स्ट्रांगली बोलोगे मुझे नहीं करना है, आप नहीं करोगे, और वो आपका दोस्त भी आपको फोर्स नहीं कर पाएगा। ठीक है,
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम उनसे प्रभावित ना हो, वो हमारी अच्छाई से प्रभावित हो, यही तो हम यहाँ से सीख के जा रहे हैं, तभी तो हम एक बेहतर विश्व बना पाएंगे, अन्यथा यदि हम उनसे प्रभावित होते रहे तो हम विश्व को बेहतर कैसे बना पाएंगे?
अभी इसके पहले का दीदी का सेशन था, उन्होंने ये बहुत स्ट्रांग लाइन कही थी कि मैं किसी से प्रभावित नहीं हूँ, बट आज वो हम सबको प्रभावित कर रहे क्योंकि उनके विचार हम तक पहुँच चुके हैं। ठीक है,
थैंक यू वेरी मच जी।
ओम शांति, मेरा नाम पायलट है, मैं श्री गंगानगर राजस्थान से आया हूँ। मेरा पहला क्वेश्चन स्नेहा जी से है, बॉडी एक्सेप्टेंस के ऊपर पहला क्वेश्चन है कि ओनली वो एस्पेक्ट्स जो आपकी बॉडी के साथ नेचुरली या दुर्घटनावश स्थायी रूप से जुड़ गए हैं वहाँ तक तो ये बहुत ठीक है, लेकिन बॉडी एक्सेप्टेंस के नाम पे मॉर्बिड ओबेसिटी और एनोरेक्जिक जो स्लिमनेस है उसको ब्यूटी का टैग दे देना, तो मुझे लगता है कि अगर यूथ अपनी फिजिकल कैपेबिलिटी को एक्सप्लोर नहीं करेगा बॉडी एक्सेप्टेंस के नाम पे तो ये बहुत बड़ा लॉस है।
फिजिकल एक्सेप्टेंस आप किस तरह से कर रहे हो ये भी मायने रखता है। पहले के जमाने में आर्टिस्ट थे टुनटुन जी जो लोगों को हंसाते थे अपनी बॉडी की वजह से, आज के जमाने में है भारती जी जो आज हंसाते हैं, वो हंसाने से हमारी एक्सरसाइज हो रही है और हम भी हेल्थी बन रहे हैं, बट द सेम टाइम भारती इज वेरी हेल्दी, आई नो हर। ओके, वो बॉडी की वजह से ऐसे नहीं, किसी का बॉडी थोड़ा सा हेल्दी चबी होता है, बच्चों का, किसी का नहीं होता है। बॉडी एक्सेप्टेंस, आप हेल्दी रहो आपके बॉडी के साथ, आप जो करना चाहते हो, दौड़ना चाहते हो, खेलना चाहते हो, वो करना आना चाहिए, तो बॉडी हेल्दी है। बाकी थोड़ा मोटापा, हेल्दीनेस, उसको आप किस तरह से लेते हो वो आपके ऊपर है। जैसे मैंने बोला, आज लोग बोलते हैं यू आर ब्यूटीफुल, यस आई एम ब्यूटीफुल, वो मैंने लोगों को एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर किया, मैंने उतना इन्फ्लुएंस किया, और मैं आज अपने आप को उसी तरह से हूँ, मैं चेहरा कवर करके नहीं घूम रही हूँ बिकॉज मैं स्कार्स आर नाउ वेरी ब्यूटीफुल। तो आप एक्सेप्ट जब तक नहीं करते हो तब तक लोगों की नज़र में चेंज नहीं मिलेगा आपको, तो आप अपना प्रस्पेक्ट चेंज करो, लोगों का हो जाएगा।
इसे बहुत सुंदर आध्यात्मिक भाषा में कहते हैं स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, यदि हमने अपने आप को बदल लिया विश्व बदल जाता है जी। एक एक ही प्रश्न करें, आपके पीछे और भी लाइन है, यदि बहुत इंपॉर्टेंट है तो प्लीज शॉर्ट में जी।
तो पहले तो मेरा थोड़ा पर्सनल कन्फेशन है कि मैं श्री रामकृष्ण जी का एक तरीके से फैन हो गया हूँ, ही इज द मोस्ट इन्फ्लुएंसर स्पीकर आई हैव एवर लिसन टू। मेरा क्वेश्चन उन्हीं से है कि जो अपने इनेट क्वालिटीज हैं, इनेट एंड एक्वायर क्वालिटीज के बारे में आपने बताया था, तो वो इनेट क्वालिटीज इतना वीक इन्फ्लुएंस क्यों है उनका, वो क्यों छिप जाती है एक्वायर्ड क्वालिटीज के पीछे, क्योंकि अगर परमात्मा हमसे अच्छी वैल्यूज ही हमारे अंदर प्रोपेगेट करना चाहते हैं तो इनेट क्वालिटीज को ज्यादा स्ट्रांग बनाना चाहिए था एक्वायर्ड क्वालिटीज के कंपेरिजन में। अभी हमारी इनेट क्वालिटीज जो अच्छी हैं वो फिर एक्वायर्ड के चक्कर में छिप जाती हैं, तो ऐसा क्यों?
आप एक बहुत सुंदर सा, बहुत टेस्टी स्वादिष्ट भोजन किया और लास्ट में एक मिर्ची खा लिया, कौन सा टेस्ट रहेगा आपके साथ?
कड़वा टेस्ट है,
बस यही है, एक्वायर्ड का इन्फ्लुएंस वहां तक ही है। ओके, और दूसरी बात, हीरे कहाँ रहते हैं, सुपर ऊपर रहते हैं या नीचे रहते हैं?
नीचे।
मोती कहाँ रहते हैं? गहराई में जाना पड़ेगा ना। भगवान ने इननेट में बहुत अच्छी चीज है, एक्वायर्ड हम ले आते हैं लाइफ में, हम इन्फ्लुएंस होते हैं तो एक्वायर्ड आ जाता है, हम इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं तो नहीं होता है। कहीं ना कहीं लाइफ में थोड़ा थोड़ा गैप्स, दैट्स व्हाट स्पिरिचुअलिटी सेज। आप थोड़ा समय निकालो ना, बैठो ना, थोड़ा खोदो ना, निकलेगा ना, वो बहुत छुपा हुआ नहीं है। थोड़ा लेयर्स, आप प्याज में भी ऊपर का लेयर्स निकालते हो तो अंदर जाते हो, इसी तरह लाइफ में भी ये जो एक्वायर्ड थिंग्स है सारे निकालोगे तो इनेट बाहर आ जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं है, आप थोड़ा समय बैठिए सारा निकल के आ जाएगा।
थैंक यू सर,
थैंक यू वेरी मच।
ओम शांति, मेरा नाम जय है, मैं मुंबई से हूँ। मेरा क्वेश्चन रामकृष्ण भाई और सुमन दीदी आप दोनों से है। मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि मन की स्थिरता को लेकर है। मन की स्थिरता को लेकर मैंने बहुत कुछ सुना है, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट करने और एग्जीक्यूट करने में बहुत इश्यू आ रहा है, या उसे कैसे करना है, इस पर आप मार्गदर्शन करें।
सुमन बहन जी,
आप कब से करने की कोशिश कर रहे हैं?
ये मैं कुछ जब से मैंने ब्रह्मा कुमारी ज्वाइन किया है, तब से मैंने बहुत ज्यादा फोकस करने का बहुत ट्राई किया है, लेकिन मन की स्थिरता।
कितने महीने या कितने साल?
ये मुझे अभी 2.5 महीना हुआ है।
2.5 महीना हुआ है ना, बस आप अभी शुरुआत अभी अभी किया है, तो क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। अभी तक तो आप इतने सालों, आपका उम्र क्या है?
मेरा 30 है।
30 ईयर्स, राइट। आप जन्म लेकर के 30 ईयर्स हो गए हैं इस बॉडी में, तो इन 30 सालों में आपने कभी कोशिश नहीं की मन को कंट्रोल करने की? अभी पिछले 2.5 महीनों से आप कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कंट्रोल करने के लिए। आप मान लीजिए एक बच्चा है, बच्चे को एक बच्चा पैदा हुआ, बचपन से ही उसको फ्री रख दिया, उसको कोई डिसिप्लिन ही नहीं किया मम्मी पापा, एकदम फ्री, जो बन चाहे जो कुछ करना है कर लो कर लो, डिसिप्लिन ही नहीं किया। अभी 30 साल में आकर के बच्चे को डिसिप्लिन करने की कोशिश किया, वो बच्चा डिसिप्लिन होगा? डिसिप्लिन होगा 30 साल में? नहीं होगा ना। बचपन से ही उसको डिसिप्लिन करने की जरूरत है, अच्छा क्या है बुरा क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसका ज्ञान देना चाहिए, उसको डिसिप्लिन करने की जरूरत है। ठीक है, जब भी हमने शुरू किया ठीक है, अच्छी बात है, उसके टाइम लगेगा आपको, लेकिन एक कंडीशन है, लगातार करने की जरूरत है। अगर आप सोचे कि आज मैं एक थोड़ा बहुत 20 मिनट आधा घंटा बैठ करके मेडिटेशन किया, फिर कल नहीं किया, फिर 15 दिन के बाद किया, फिर वो 15 दिन के गैप हो गए, फिर वो कंट्रोल में नहीं आएगा। तो इसीलिए लगातार हर रोज आप अगर 15 ज्यादा टाइम नहीं, 15-20 मिनट भी आप बैठ करके मेडिटेशन करेंगे, लेकिन हर रोज करने की जरूरत है। जैसे पत्थर है, पत्थर पर बूंद बूंद पानी एक ही जगह पर हर रोज लगातार गिरता जाएगा तो वहां छेद हो जाता है। पत्थर कितना सख्त है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रेंथ है उसमें, लेकिन पानी के बूंद में ज्यादा स्ट्रेंथ है ही नहीं, लेकिन लगातार उसी जगह पर गिरता रहा फिर वहां छेद हो जाता है। ऐसे भले कितना भी हमारा संस्कार कठोर है, कितना भी नेगेटिव है, लेकिन हर रोज बूंद बूंद पानी, ज्ञान की पानी अगर बूंद बूंद हर रोज हम पीते रहे, हर रोज ग्रहण करते रहे, हर रोज मेडिटेशन करते रहे, 15-20-24 घंटे में तो 15-20 मिनट तो निकाल ही सकते हैं ना, सब निकाल सकते हैं, 15-20 मिनट हर रोज निकाल ही सकते हैं, तो 20 मिनट लगातार आप करते रहेंगे तो जरूर मन कंट्रोल हो जाएगा, है ना। जल्दीबाजी ना करें, लेकिन जैसे जिम में जाते हैं, जिम में जाकर के फिर सोचे कि 2 दिन में ही मेरा मसल बिल्डअप हो जाए, नहीं हो सकता है ना, लगातार करने की जरूरत होता है। ठीक है,
थैंक यू वेरी मच। वक्त की सीमा हो रही है, इसीलिए मैं चाहूंगा कि 5 मिनट के अंदर बहुत संक्षेप में अपनी बात रखेंगे प्रश्न, और संक्षेप में मैं चाहूंगा पैनलिस्ट से भी उसका उत्तर दें, हम 5 मिनट में कंक्लूड करेंगे आज के सत्र को। जी जी,
ओम शांति। मेरा नाम बाबू कुडल, मैं पुणे से हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि दीदी ने बता रही थी कि हमको लक्ष्य चाहिए, किसी का तो लक्ष्य चाहिए, तब भी जीवन में हम आगे बढ़ेंगे, कुछ तो करेंगे, लेकिन अभी के तो यंग में क्या प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम है पता नहीं मेरे को। एक तो हासिल करने के बाद भी डिप्रेशन है, नहीं तो फेल्योर होने के बाद भी डिप्रेशन है। और दीदी ने बता रही थी, सुमन दीदी ने, कि ऐसा ऐसा कि जब हम छोटे थे तब से ही हमारा संस्कार बढ़ते बढ़ते आना चाहिए, लेकिन हम जब एजुकेशन इंडस्ट्री में हम देखते हैं कि छोटे बच्चे से ही तुमको डॉक्टर बनना है, तुमको इंजीनियर्स बनना है, तुमको ये बनना है, तुमको वो बनना है, ये मटेरियलिस्टिक ही चीजें चल रही है अभी, लेकिन बाद में जब बनने के बाद बनने के बाद भी उनको दिक्कत है, नहीं बनने के बाद भी दिक्कत है, मतलब ये कुछ क्या प्रॉब्लम है इसमें, एजुकेशन इंडस्ट्री या हमारा संस्कार हमारा? थैंक यू।
ओके, बनने के बाद भी डिप्रेशन है,
ना
बने तो भी डिप्रेशन है।
यस यस,
शायद आप वो बनना ही नहीं चाहते हो, कहीं ना कहीं किसी ने चाहा कि आप वो बनो तो आप बन गए, उसके लिए बन गए, वो खुश है, आप डिप्रेस्ड हो।
नहीं, किसी की चाहा ऐसा नहीं बोल सकते हम जब छोटे थे तब से ही चल रहा है ये सिलसिला। हाँ। आपको डॉक्टर इंजीनियर, तुमको आईएएस बनना है, मैंने तो बहुत लोगों को देखा आईएएस बनने के बाद ही वो सुसाइड।
बहुत अच्छी बात बोली, इसीलिए हाँ। मैं ये बात को दोहरा रहा हूँ कि देखिए, लक्ष्य माना इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, ये बनना, वो बनना, वो एक प्रोसेस जिस उसको कहते हैं लाइवलीहुड। लाइफ इज डिफरेंट एंड लाइवलीहुड इज डिफरेंट। जीवन के लिए जीवन उपाधि है, लाइफ के लिए लाइवलीहुड है, लाइवलीहुड के लिए लाइफ नहीं है। चाहे वो आईएएस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वो लाइवलीहुड है। दीदी पहले बोल बता रहे थे, आप ये बनना चाहते हो तो क्यों बनना चाहते हो, वो उसका कुछ पर्पस का डेफिनेशन हो।
लेकिन ये कोई नहीं बताना चाहते है ना क्यों बनना चाहते हो, सब मम्मी पापा जो भी हो तुमको ये बनना है।
हाँ, ठीक है, मम्मी पापा के लिए बनना वो अलग चीज है, आप खुद के लिए क्या बनना चाहते हो?
वो छोटे थे तब हमको समझ में नहीं आता।
हाँ बाबा, छोटे थे, अभी तो समझ में आ गया ना।
अभी है, लेकिन अभी है, हमको तब भी अकल आता तो अभी हम बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाते।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लाइफ कोई भी एज पे स्टार्ट हो सकता है।
यस,
कोई भी एज से लाइफ स्टार्ट, लेट मी टेल यू, 80 साल में भी लाइफ को स्टार्ट करने वाले कई एग्जाम्पल्स है दुनिया में, 80 साल में लाइफ को स्टार्ट किया है, आप गूगल करिए आपको मालूम पड़ेंगे। तो शायद 25 में ही लग रहे हो।
नहीं, सही है सही है, देर इज नो डाउट वॉट एवर यू आर टेलिंग, बट द प्रॉब्लम मेरे को ये लगता है कि शुरुआत से अच्छा से हुआ तो बहुत अच्छा होता।
आप सामाजिक विषय को उठा रहे हो, व्यक्तिगत हाँ, विषय को नहीं उठा रहे।
हाँ, सामाजिक,
बिल्कुल, अगर सामाजिक विषय को उठा रहे तो एक ही शब्द एक ही बात है, आप बच्चों को क्या बनना चाहते हो ये कभी नहीं पूछना, बच्चों से ये पूछना आज क्या करना चाहते हो।
सही बात है,
आज अब क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो वो नहीं है, वो ऑटोमेटिक है, वो आउटकम है। आज क्या करना चाहोगे, आज कैसे करना चाहोगे, क्या देखना चाहोगे, आज से शुरू करें, राइट? चलो, आप मिस किए, आपके जनरेशन को तो ना मिस करें।
श्योर सर।
और आप ये प्रश्न उठाया तो सभी के लिए ये संकल्प तो आ गया कि हम सभी को ये पूछे कि आज क्या करना चाहते हैं।
श्योर श्योर, थैंक्स अ लॉट, ओम शांति।
थैंक यू। आप दोनों ही अपना प्रश्न एक साथ पूछ लें।
ओम शांति। मेरा प्रश्न थोड़ा इम्पोर्टेंट है, मैं
आपको पहले आना था इम्पोर्टेंट।
ये हुआ ना कॉन्फिडेंस, ये हुआ कॉन्फिडेंस।
पिछले दो दिन से मैं भाई जी से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ग्वालियर से हूँ, मेरा नाम विजय वर्मा है, और थैंक यू प्रहलाद भाई जी कि आप मुझे इस सेशन में लेके आए, और यहाँ से मेरी जर्नी को एक नया स्टार्टअप मिलेगा। सर, मैं मार्शल आर्टिस्ट हूँ, मैं प्लेयर भी हूँ और कोच भी हूँ, और मैं ग्वालियर में कार्मल कॉन्वेंट गर्ल्स स्कूल है, बहुत बड़ा स्कूल है, मैं वहाँ पर टीचिंग भी देता हूँ और मेरा पर्सनली क्लास भी चलता है। मैं मार्शल आर्ट के लिए बेसिकली गर्ल्स को वुमेन्स को अवेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि हम आए दिन न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि कई सारी घटनाएं हो रही हैं, अभी रिसेंटली ही दिल्ली में हुआ था, तो एक तो ये चीज़ लोग जानते हैं, सारी चीज़ें समझते हैं, लेकिन फिर भी ना उसके लिए अवेयर नहीं होना चाहते। मतलब कि मैं चाहता हूँ कि वो ट्रेनिंग करें, एटलीस्ट इतनी तो करें कि कहीं पर भी किसी भी सिचुएशन में यदि कोई गर्ल्स या कोई लेडी अगर फंसती है तो अपने आप को वहाँ से डिफेंस करके बाहर आए। दूसरा, मैं चाहता हूँ एजुकेशन पर भी कि जैसे आजकल सभी पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ना वो एक गहरी समझ नहीं आ पा रही है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और इसका एक हम पर और हमारे समाज पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। मतलब कि जैसे कि मान लीजिए कि लोग अपनी आइडियोलॉजी बना लेते हैं, कोई फेमस एक्ट्रेस हैं, स्टार हैं, उनको आइडल बना लेते हैं, और हम देखते हैं कि वो उनकी जो हैबिट्स हैं वो इस तरह की नहीं है कि अपनाई जा सकें, लेकिन फिर भी लोग उनके पीछे पागल हैं। तो ये इस तरह की आइडियोलॉजी को चेंज करने के लिए मैं मतलब क्या कर सकता हूँ,
और इसके लिए आप मुझे अगर कुछ बुक्स सजेस्ट करना चाहें तो बहुत बहुत आभार है आपका। और आप जो भी बुक बताएंगे प्लीज मेरे साथ ही उधर बैठे हुए आप लिख लीजिएगा।
स्नेहा जी आप कुछ कहेंगे इसमें?
आपने कहा कि आइडियोलॉजिस्ट है जिनको हम मानते हैं और उनकी सारी हैबिट्स हम नहीं ले सकते हैं। इसका जवाब तीनों ने भी हमने अलग अलग प्रकार से दिया है। मैंने भी कहा आप अपने थॉट्स को आपके विचारों को स्ट्रांग रखिए। कोई नहीं कह रहा है, वो आपका जो आइडल है वो आके आपसे नहीं कह रहा है कि मैं सिगरेट स्मोक करता हूं तो आप भी करो। उसका जो अच्छाई ये है उसको ले लो, हर चीज को लेने की जरूरत नहीं। आइडियल है, बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने एक सब्जेक्ट में टॉप किया है और उस विषय में वो आइडियल बने हैं। उनकी सारी हैबिट्स आपके लिए नहीं है, वो आइडियोलॉजी को खाली ले लीजिए। बहुत सिंपल तरीका है वो, हर चीज नहीं कॉपी करना है। आई लव शाहरुख खान, इसलिए शाहरुख खान के कपड़े मुझ पे नहीं फिट होंगे। ओके तो आपका ड्रेसिंग सेंस आपका होना चाहिए, जो आपका कंफर्ट भी हो वो आपके लिए फैशन होता है। ठीक उसी तरह आप जिस आइडियल्स को मानते हो उसकी अच्छाई लो, बुराई लेने के लिए किसी ने फोर्स नहीं किया है आपको, वो आपका अपना है तो मत लीजिए। ठीक है,
मुझे एक बात कहना है। एक्चुअल एक होता है सेलिब्रिटीज, ओके, दूसरे होता है रियल हीरोज, ओके। सेलिब्रिटीज ही रियल हीरोज नहीं है, रियल हीरोज की स्टोरीज को सेलिब्रिटीज ने हमको दिखाया है। है ना? तो आप क्या कर सकते हो, आपका जो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे लिए तो आप ही एक रियल हीरो हो। नहीं रियली, आप मार्शल आर्ट सीखे हो और कई बहनों को मार्शल आर्ट से अपने आप को कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हो, सेल्फ डिफेंस बढ़ा रहे। छोटी सी शुरुआत है, छोटे से जगह पे शुरुआत की हो मगर बहुत अच्छा की हो। आप यहाँ प्रश्न भी आपके लिए नहीं पूछ रहे हो, आप उन बच्चों को इन्फ्लुएंस को कैसे कम किया जाए वो उसका प्रश्न है। कितना सोशल है आपका प्रश्न, खुद के लिए नहीं है। तो रियल हीरो हो, हीरो इन मेकिंग हो, फाइन। अब देखो, अब आप बच्चों को भी रियल हीरोज को दिखाना शुरू करो ना। एक माझी है जिनके ऊपर मूवी भी नहीं है, हीरो तो कोई और था मगर एक्चुअल हीरो तो वो माझी था ना, जो एक पहाड़ को 25 साल बैठ करके पूरा तोड़ दिया पहाड़ को। आपके लोकल में भी कुछ एक अच्छे हीरोज होंगे, आप इन बच्चों को वो हीरोज को दिखाओ, वो हीरोज को लोकली आइडेंटिफाई करना सिखाओ, शायद बहुत अच्छा डिफरेंस ले आ सकोगे। ओके,
थैंक यू वेरी मच। बहुत सुंदर प्रश्न के लिए, बस ये लास्ट प्रश्न बहन को दीजिए।
ओम शांति, मैं स्नेहा मेहता, मैं फरीदाबाद से हूँ। मेरा क्वेश्चन है, कई बार लाइफ में ऐसी स्टेज आ जाती है कि हमें अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और करियर में से एक चीज चूज करनी होती है। मीन्स अगर हम करियर चूज करते हैं तो हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाइक माई पेरेंट्स और हमारे बच्चे वो सफर कर रहे होते हैं, क्योंकि एक टाइम पे हमारे पेरेंट्स को भी हमारी जरूरत होती है और हमारे बच्चों को भी हमारी जरूरत होती है। अगर हम सिर्फ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को चूज करते हैं तो थोड़ा सा इनर सोल को भी ये लगता है कि हमारा करियर कहीं मिस हो रहा है, तो हम इन दोनों को कैसे बैलेंस कर सकते हैं?
सुमन बहन जी,
हम इंसान हैं तो हमारे लिमिटेशंस होते हैं ना, तो उस लिमिटेशन को समझते हुए हमें फिर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी में जो भी हम चाहते हैं तो सब कुछ नहीं मिलता ना। कभी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। हमारे सामने चॉइसेस होते हैं तो जो चूज करते हैं, जो डिसीशंस लेते हैं, तो उसमें हमें संतुष्ट रहना पड़ेगा। एक चीज को तो लेट गो करना ही पड़ेगा।
तो इनमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा?
तो खुद की चॉइस है, वो हर एक की चॉइसेस अपने अपने होते हैं, तो खुद को डिसाइड करना होगा।
पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई थिंक
अच्छा, आपने ऑलरेडी डिसाइड किया है?
नहीं, डिसाइड नहीं किया।
ठीक है, मेरा अपना एक छोटा सा अनुभव सुनाओ। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है, शायद पहली बार सुना रहा हूँ ये अनुभव। मैं भी आप कहीं ना कहीं एक सिचुएशन में, आपकी परिस्थिति में मैं भी गुजरा हूँ। ओके, मदर की हेल्थ बिल्कुल ठीक नहीं थी और वो घर को हैंडल नहीं कर पा रहे थे, मुझे अपने प्रोफेशन करियर की ओर भी एस्टेब्लिश करना, और मुझे सोशल सर्विस में भी स्पिरिचुअल सर्विस में भी बहुत इंटरेस्ट था। फिर मैं क्या कौन सी चूज करूं, घर का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। मैंने चूज किया अपने आप को, अपने टाइम को मैनेज करने का। मैंने चूज किया अपने एनर्जी को मैनेज करने का। मैंने चूज किया किसी चीज को नहीं छोड़ने का। मैंने अर्ली मॉर्निंग उठा, जो ऑर्डिनरी उठते हैं उससे भी बहुत अर्ली उठना शुरू किया। घर का सारा काम कर लिया, खाना भी पका लिया, घर का जो भी क्लीनिंग है, यूटेंसिल्स है, वॉशिंग है, सब कुछ मॉर्निंग 5:30 तक सब कुछ खत्म कर दिया। और डाइनिंग के ऊपर सारा भोजन का जो भी जरूरत है, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए, लंच के लिए भी सारा बना के रख दिया। और फिर मैंने अपनी सेवाओं में निकल गया। फिर उसके साथ साथ मैंने सेवाओं की भी 10 बजे तक सेवा भी की। फिर उसके बाद अपने प्रोफेशन में भी निकल गया। फिर शाम को भी आया, वो भी सारा चीज किया, सेवा भी कर पाया और घर के भी संभाल पाया। रात को 10 बजे आराम से बाबा को प्यार से याद करके सो गया।
थैंक यू।
मुझे लगता है बहुत सुंदर उत्तर हमें मिले हैं हमारे सभी प्रश्नों के। तो एक बार हमारे तीनों ही विद्वान अनुभवी वक्ताओं के लिए हम जोरदार ताली बजा के इनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने हमारे सभी जो चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, उनका सुंदर निराकरण किया और हमें ये बताया कि हम कैसे एक बेहतर विश्व के लिए, नए विश्व के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं, अपने आप को रोल मॉडल बना सकते हैं। ये हमारे हाथ में है कि हम कब कहां से शुरुआत करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये सत्र, ये स्थान, पवित्र स्थल, इस शुरुआत करने से बेहतर स्थान और कोई नहीं हो सकता। राइट, तो आज से ही हम ये शुरू करेंगे। कौन कौन कहता है आज से ही ये सुंदर शुरुआत होगी, एक बेहतर विश्व की ओर मेरा योगदान। दिल से आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार जोरदार तालियां अपने लिए भी बजा लें इस शुरुआत के लिए। और जो हमें इस सुंदर शुरुआत के लिए शक्ति देने वाले हैं, बल देने वाले हैं, प्रेरणा देने वाले हैं, हमारे परमपिता परमात्मा, चलें उन्हें भी दिल से शुक्रिया अदा करते हुए इस सत्र की समाप्ति की मैं एक जी आप कुछ कह रहे हैं।
और इस सत्र को इतने अच्छी रीति से कंडक्ट किया हमारे रूपेश भाई को, हम सब आप सबकी ओर से बहुत 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 धन्यवाद।
थैंक यू। चलें हम 2 मिनट परमात्मा पिता की याद से इस सत्र को संपन्न करेंगे। ओम शांति।
हमसे काल विहारा, हम शिव की